ओम शांति। ज्ञान योग भट्टी के आज तीसरे दिन सच में बहुत भाग्यशाली हैं हम सभी। अब प्यारे बाबा का गीत बज रहा था, सच में शायद सभी की आंखें भी गीली हो गई होंगी, बाबा की स्मृति आ गई होगी, साकार बाबा की। हर पल हर घड़ी बाप दादा साथ हैं, परंतु जब साकार की बात आती है तो निश्चित रूप से मन में आता है कि काश हम भी साकार ममा बाबा की पालना लिए होते। परंतु आज हमारे बीच ऐसी महान हस्ती जो ममा बाबा की बचपन से पालना ली है, और सच में आप ममा बाबा के समान बनी हुई, जिस तरह से ममा गंभीरता की मूर्ति थी, तो ऐसे ही हमारी आदरणीय सुषमा दीदी जी आप गंभीरता और रमणीकता की मूर्ति हैं। ममा के समान आप नजर आती हैं, आपकी दृष्टि से वो शक्ति मिलती है, और बाप समान आप एक बहुत ही अच्छे कुशल अनुशासन करने वाली एक लीडर हैं हमारे। तो सुषमा दीदी जी जयपुर वैशाली नगर की आप सब जोन इंचार्ज हैं, बिजनेस इंडस्ट्री विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, हमारी संस्था की आप कमेटी मेंबर हैं, और एक आदर्श व्यक्तित्व की धनी आप सुषमा दीदी जी हैं। आप लोग सुनते रहते होंगे यूट्यूब में, बहुत अच्छा योग कराती हैं, तो योग का अनुभव में उड़ाती रहती हैं, और आपकी क्लासेस भी बहुत धारणा मूर्त होती हैं। परंतु आज हम आपसे ममा बाबा के साथ के अनुभव सुनेंगे, और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ, वो अनुभव सुनते हुए ये महसूस करें हम भी उस समय थे, जो दीदी सुनाएंगे हम खुद अनुभव करते जाएं। आदरणीय दीदी जी, आपसे हम अनुभव के बोल सुनेंगे और अनुभव करेंगे। ओम शांति।
थैंक यू। ओम शांति। सब सुनते सुनते थक तो नहीं गए? नहीं तो एक बार खड़े हो जाइए, जरा चुस्ती आ जाए, बहुत देर से बैठे, जरा अपने हाथ पांव खींच लीजिए दोनों हाथ से, एकदम इस छत को लगाओ धक्का। ताली नहीं, ताली नहीं, आवाज ताली नहीं बजा, हाथों ऊपर जरा टच करो छत को, लगाओ धक्का, अपने को दाएं बाएं जरा घुमा लीजिए। आवाज नहीं, आप बातें ना करो, बैठ जाइए। आ गई फुर्ती? बैठ जाएं। साइलेंस, अपन को तो सिर्फ उठना था और बैठना था, आवाज कहां से आई? ओम शांति। जब योग भट्टियां कहते हैं तो वो पुराने दिन याद आते हैं। विचार कीजिए, यज्ञ की स्थापना 1936 में हुई, मम्मा बाबा के संग हमारी दादियों ने 14 बरस तक तपस्या की, और जब भारत में आ गए, हमारी दादियां, मम्मा, बाबा तो कम मगर मम्मा, दादियां सेवाओं के लिए चारों ओर निकले। जब तक मम्मा थी बहुत थोड़े सेंटर थे हमारे पूरे भारतवर्ष में, कोई 50-60 सेंटर होंगे मुश्किल से। और तब सेंटर्स पर समय प्रति समय योग तपस्या के प्रोग्राम होते थे। उसके बाद मम्मा अव्यक्त हुई, बाबा अव्यक्त हुए। 69 के बाद सब में दृढ़ता लाने के लिए योग भट्टियां मधुबन में, पांडव भवन में शुरू हुई। कुमारियों की अलग, माताओं की अलग, भाइयों की अलग। जिन भट्टियों में भट्टी की शुरुआत में अव्यक्त बाप दादा आते थे और लास्ट में भी बाप दादा आते थे, फिर भट्टियां ऐसे कराई जाती थी जैसे दादियों ने 14 साल तपस्या की थी। पांडव भवन में जहां शांति स्तंभ बना हुआ है, उसके सामने दाएं बाएं जो बिल्डिंग है वह ट्रेनिंग सेंटर कहलाती है। भट्टी वाले भी वहां सामने ही रहते थे और अगर हम शांति स्तंभ की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो लेफ्ट हैंड में जो रूम्स हैं ऊपर, वो बड़े हॉल थे दो, जिनमें हमारी ट्रेनिंग और भट्टी होती थी। और आपको मालूम है भट्टी वाले कैसे, परिवार तो बहुत छोटा था, हम सब एक दूसरे को जानते थे। मम्मा बाबा केवल ऐसे नहीं दादियों को जानते थे, वो जमाना था जब मम्मा बाबा ये जानते थे कि ये बच्ची किस परिवार की है, इनके माँ बाप कौन है, ये कहाँ से है। जैसे आज आप भाई बहनों का परिचय अपनी टीचर्स बहनों से होता है, शायद विस्तार होने के कारण आपका परिचय भी कम हो, लेकिन आप सोचिए अलग अलग सेंटर्स, मम्मा बाबा सब जानते थे परिवार सहित, कौन कहाँ से है, कैसे है। हमारी बड़ी दादियां भी हम सबको जानती थी। लेकिन जब भट्टी होती थी, समीपता इतनी ज्यादा थी, लेकिन जो भट्टी में होते थे, भट्टी माना बस एकदम अंतर्मुखी। अब मान लीजिए आप भट्टी में हैं, मैं भट्टी में नहीं हूं, वैसे ही सेवाधारी हूं, सेवा में हूं या मधुबन में रह रही हूं, तो जो भट्टी में होते थे ना, वो जो नहीं होते थे उनकी तरफ देखते भी नहीं थे। समझ में आई बात? क्यों नहीं देखते थे? जो भट्टी नहीं कर रहा है उसके वाइब्रेशन और जो कर रहा है उसके वाइब्रेशन में कितना अंतर होगा। उन दिनों कहना नहीं पड़ता था साइलेंस में रहो, अपने आप साइलेंस में रहते थे। और जब हम 3-3 दिन, 5-5 दिन योग भट्टी करते थे, आपको सच बताएं, चेहरे ऐसे लाल लाल हो जाते थे, एकाग्रता होती थी ना, और एकदम शांत भट्टी वाले। आप विचार कीजिए, कराची में रहकर मम्मा बाबा ने भाई बहनों की भट्टी क्या कराई होगी। तो दादियां सुनाया करती थी, बाबा सारी सारी रात योग तपस्या कराते थे। कई बार दादियां सुनाती थी कि बाबा 2 बजे उठ के सब कमरों में चक्कर लगाते थे। अब उस समय तो आप सोच सकते हैं ना, कराची में जब रहते होंगे, अधिकतर हमारी दादियां उस समय छोटी आयु की थी, बड़ी आयु वाले भी थे क्योंकि परिवारों के परिवार आए, कई माँ बेटी इकट्ठे आए, लेकिन वो माँ भी कितने बरस की होगी, 20-25 बरस की। जैसे हमारी मनोहर दादी सुनाया करती थी, वो केवल 8-10 बरस की थी। कुंज दादी सुनाया करती थी 7-8 बरस की, गुलजार दादी जी 8 बरस की। ऐसे छोटी छोटी आयु में ये आए। लेकिन मैं तो बहुत बार इस बात को सोचती हूं, इतनी छोटी आयु में हमारी इन दादियों ने क्या पहचाना। हम तो सब इतने इतने बड़े अब बैठे हैं, हम पूछेंगे निश्चय किस किस को है, हाथ सब भले उठाएंगे, पर इतना निश्चय, इतना नशा, निश्चय माना नशा, वो दादियों को था। अब मैं आपको नशे की एक बात सुनाती हूं। मैं 1971 में यज्ञ में सेवाओं के लिए समर्पित हुई। ज्ञान में तो लौकिक माँ बाप, मैं 5-6 बरस की थी तभी से आ गए, तो हम माँ बाप के साथ आते थे बच्चे। 71 में जब मैं समर्पित हुई, 72 में मैं पटना में कुंज दादी के साथ थी। और आप में से जो बड़ी आयु के होंगे उनको याद होगा, 1973 में शायद भारतवर्ष में इमरजेंसी लगी थी जब इंदिरा गांधी जी थी, और उस समय जितनी भी संस्थाएं थी उनको बैन किया गया था। और ये गौरव की बात है कि ब्रह्मा कुमारी बैन नहीं हुई थी। ताली नहीं बजाई। बहुत से सेंटर्स पर मैं समझती हूं इंक्वायरी हुई होगी, मैं तो छोटी थी इतना मुझे मालूम नहीं। पटना सेंटर हमारा एकदम मेन बाजार में कदम कुआं में था, फर्स्ट फ्लोर पर। शाम के समय भाई बहने जैसे कोर्स वाले भी आते हैं, मुरली वाले भी आते हैं, हम लोग 4:30 तैयार होके, वहां एक ऑफिस छोटा सा बना हुआ था जहां कोर्स कराते थे, भाई बहनों को अटेंड करते थे। तो मैं किसी दो भाइयों को कोर्स करा रही थी और 2-3 लोग आए, वो भी बैठ गए। कोर्स पूरा हुआ उसके बाद उन्होंने कहा, हम CBI से आए हैं, कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं। तो वो भी समझ ही गए होंगे, ये तो छोटी सी बहन बैठी है। उन्होंने कहा, यहाँ आपका बड़ा कौन है? मैंने कहा, हमारी दादी जी हैं, बुलाइए। मैंने कुंज दादी को बुलाया, तो उन्होंने, इतना लंबा कागज था जिसमें 15-20 प्रश्न थे, कुंज दादी थी, किशनी दादी जी थे और मैं थी, 3 जने थे हम। तो सबसे पहले, जब तक अब दादियों को तो मैं इन्फॉर्म करके आई, मैं बैठी तो मेरे से ही पूछना शुरू किया, आप कौन है, कहाँ से हैं, आपके लौकिक माँ बाप कहाँ रहते हैं, आपके फादर क्या करते हैं। तो सिंपली जैसा था मैंने वैसे ही बता दिया, लिखते गए सब कुछ। अब दादी जी भी आ गए, कुंज दादी। अब आप देखिए, कुंज दादी से पूछा, आपका नाम? तो कुंज तो बाबा प्यार से उनको कहता था, उनका नाम निर्मल पुष्पा था, तो नाम बता दिया, उन्होंने लिख लिया। आपके पिताजी का नाम क्या होगा? पिताजी का नाम का प्रजापिता ब्रह्मा। अब हो गया दोनों में कशमकश, ऑफिसर भी और दा। वो कहता है, नहीं ये नाम नहीं, आपके पिताजी का नाम। हमारी कुंज दादी थी ना, उसको इतना नशा, मीडियम हाइट थी, घुंघराले बाल दादी के। और दादी जब ज्ञान सुनाती थी, आप में से किसी ने देखा या नहीं देखा, अब तो शरीर छोड़ दिया, इतने नशे से ज्ञान सुनाती थी कि एक बार तो सुनने वाला भी सोचेगा कि कहां से आया है व्यक्ति, कोई फरिश्ता है। तो कहा, हम तो छोटे छोटे थे आ गए, हमें तो बाबा ने ही पाला है, मेरे पिता का नाम प्रजापिता ब्रह्मा है। वो लिखने को तैयार नहीं और दादी बदलने को तैयार नहीं, मगर अंत में उसको लिखना पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। दादी ने कहा, हमने देखा ही नहीं, हम तो 7-8 साल के थे आ गए, इतने बड़े हो गए, बाबा ने बड़ा किया है, हमारी जीवन बाबा ने बनाई है, हम जो हैं बाबा के सदके हैं। दादी का नशा, क्या नशा था। मैं भी देखती रही, मेरा तो सेवा का भी शुरुआत थी, दादी का नशा। फिर तो उन्होंने और जो जो पूछना था, आपका हेडक्वार्टर्स, आपका खर्चा, ये वो सब पूछा गए। लेकिन मैं वो दृश्य आज तक, मैं कई बार ये शेयर करती हूं, मैं भूली नहीं। हमारी दादियों का नशा, बाबा ने हमारी जीवन बनाई है। अब हम सबकी जीवन बाबा ने बनाई है या नहीं बनाई है, बताइए। ढीली ढीली है, दो चार यूं करते हैं, बाकी तो नहीं करते। सोच के कर, सचमुच हमें नशा, क्योंकि हम अदर झूल में हैं। बुरा नहीं मानना भाई बहने, केवल आपकी बात नहीं है, चाहे सेंटर्स पर भी रहते हैं, बहुत से भाई बहने लंगड़ा के ही चलते रहते हैं। हाँ, ज्ञान तो अच्छा है, लेकिन ज्ञान में जो दृढ़ता होनी चाहिए। हमारी चंद्रमणि दादी जी थी, और चंद्रमणि दादी जी को शेरे पंजाब बाबा कहता था। वो तो एक लंबी कहानी है कैसे शेरे पंजाब हुई। एक बार मम्मा अमृतसर में आई थी, और वहां एक भाई आते थे, अब तो नहीं है, उनकी युगल, जैसे आज बाबा ने सवेरे मुरली में कहा था ना, किसी किसी की युगल आती नहीं है, उसकी भी युगल आती नहीं थी। वो कॉलेज में प्रिंसिपल थे, अब वो बहुत अगेंस्ट आर्य समाजी, मालूम पड़ा मम्मा आ रही है अमृतसर में, और वो कहे मम्मा को मैं अमृतसर में घुसने नहीं दूंगी। मम्मा आई, उन दिनों तो छोटे छोटे सेंटर्स होते थे, तो फर्स्ट फ्लोर जो उस मकान का होगा वहां मम्मा, और बाहर वो बहन कॉलेज में वो भी पढ़ाती थी, तो लड़कों को लेके आ गई और कहे हमें मम्मा से मिलना है, मम्मा से मिलना है। बहुत से लोग ऐसे हल्ले गुल्ले में तो शामिल हो जाते हैं। हमारी चंद्रमणि दादी जी दरवाजे के आगे दरवाजा पकड़ के यूं खड़ी है, और जगदीश भाई जी जिन्होंने इतना साहित्य लिखा है हमारा, वो भी गए हुए थे। फिर जगदीश भाई जी ने वहां जो उस ग्रुप में थोड़े सयाने अच्छे लोग थे, उनको से बात की कि ये तो आप भी सोच सकते हैं कि इतना मॉब तो ऊपर जा नहीं सकता है, आप अपना ग्रुप बना लो 10-12 लोगों का, फिर बारी बारी से जाओ, मम्मा से मिलो, मिलने में मना नहीं है। उन्होंने कहा ये बात तो ठीक है। तो फिर उन्होंने अपना ग्रुप बनाया 10-12 लोग। अब आप सोचिए, अगर आपको कहा जाए यहां मम्मा बैठी, आपका टर्न आ जाए, आप कैसे जाएंगे? अंदर में एक्साइटमेंट है, तो एकदम वो जो 10-12 ऐसे भाग के चढ़े जैसे कोई जेल से छूटा हो, और मम्मा कमरे में एकदम साइलेंस में, जो बाबा कहता है साइलेंस पावर। और चंद्रमणि दादी जी सुनाया करते थे कि जैसे जैसे आते गए, चप्पल खोले कमरे, कमरे में दादी मम्मा ऐसे बैठी है कुर्सी पर, जो जाए चुपचाप बैठ जाए, जो जाए बैठ जाए, और फिर जब सब बैठ गए, मम्मा ने कहा पूछो, कुछ कहना है, आप सब ठीक है? अब बताओ वो क्या कहेंगे कि हम आपको निकालने आए हैं, अपोजिशन के लिए आए हैं। वो बेचारे तो सिर ही ऊपर, चंद्रमणि दादी जी बहुत हंसा करती, दादी जी खुल के हंसती थी, तो दादी जी कहती है वो बेचारों का सिर ही ऊपर ना उठे, नाड़ एकदम नीचे। मम्मा कहे बच्चे कुछ कहना है बोलो। अब मां के आगे बच्चा क्या बोलेगा? फिर मम्मा ने उनको ज्ञान की बात सुनाई, 20-25 मिनट बैठे होंगे, और नीचे जो लोग खड़े थे उनको बेचैनी, आए नहीं, आए नहीं, आए नहीं। उन दिनों में ये बहुत फेमस था, ब्रह्मा कुमारियों के पास जो जाता है वो वहीं रह जाता है, इनके पास जादू है। वो आपस में कहें देखा हो गया जादू, आई नहीं रहे, आई नहीं रहे। फिर जब सब मिलके मम्मा से आए और वो कहें कि आपको तो मम्मा को सब से मिलाना चाहिए, लेकिन ऐसा वातावरण भी तो हो, और सबको उन्होंने कहा इनकी मम्मा तो साक्षात देवी है, तो हमारी दादियों का नशा तपस्या माना ये नहीं है, दो दो घंटा बैठ गए और बैठेंगे भी हम कैसे, कोई तो ऐसे बैठा है कोई ऐसे बैठा है। अब क्या नशा चढ़ेगा, अगर नशा हो मैं भगवान, आज भी बाबा ने कहा तुम बाप के सामने बैठे हो, आप सोचिए एक सेकंड अपने भीतर, मैं भगवान के सामने बैठी हूं कैसे बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, भगवान मेरे सामने है। बाबा की एक अव्यक्त मुरली भी है जिसमें बाबा ने कहा बच्चे यहां साकार वतन में तो हर चीज की लिमिट है, आप बच्चे स्टेज पर भी आते हैं, आप में से जिन्होंने बाबा से मुलाकात की हुई होगी तो बाबा के सामने आते हैं वहां समय की लिमिट है, दो मिनट दृष्टि ली चलो चलो, लेकिन बच्चे अव्यक्त वतन में कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी देर चाहें बाबा से दृष्टि लीजिए। अब बताइए हमें इतनी फ्रीडम मिली हुई है, आपको किसी मिनिस्टर से मिलना हो, गवर्नर से मिलना हो, आपको मालूम होगा गवर्नर हाउस में जाते हैं ना, आधा घंटा पहले ही बुला लेते हैं, जाओ एंट्री करो फिर नाम लिखाओ ये करो फिर बैठो तसल्ली से फिर वो अंदर लेके जाते हैं। लोगों में कितनी एक्साइटमेंट होती है, गवर्नर से मिलना है, गवर्नर से मिलना है, एक एक घंटा कहीं तो पहले ही पहुंच जाते हैं, और हमें कौन मिल रहा है, पीछे वालों कौन मिल रहा है, कौन मिल रहा है, स्वयं सर्वशक्तिवान मुझे मिल रहा है, मुझे दृष्टि दे रहा है नशा। तो योग तपस्या का अर्थ जो हमने समझा, क्योंकि जब हम लोग ज्ञान में आए तब 7 डेज कोर्स नहीं होता था, मैं बहुत बार सुनाती हूं ये तो बहुत बाद में शुरू हुआ है, यहां तक कि ये जो हमारे मुख्य चित्र हैं कल्प वृक्ष सृष्टि चक्र और त्रिमूर्ति, ये भी हमारे देखते देखते बने, चित्र भी नहीं थे। तो हमारे समय पे ना तो कोई कोर्स था ना कोई योग की इतनी व्याख्या थी, लेकिन जैसे ही बाबा के घर में आए दादियों से मिले हमें लगता था यही परिवार हमारा है, ये दादियां हमारी, हमें ऐसे नहीं लगता था कि हम अलग हैं ये अलग हैं। तो बाबा जो हमें कहता अपनी फाउंडेशन पक्की करो, मैं आत्मा हूं, उन दिनों कोई नहीं कहता था मैं आत्मा हूं, आत्मा है ये तो ज्ञान था, लेकिन ये अभ्यास करना है, ये हमारी दादियों का, ये हमारे मम्मा बाबा का नेचुरल था। अभी तो हम कहते हैं अभ्यास कीजिए मैं आत्मा हूं, बार बार कहते हैं आप यहां अपने ध्यान को ले आइए आत्मा यहां है, क्योंकि आजकल तो हम देखते हैं योग में भी बैठते हैं ना कैसे बैठते हैं, करने वाले भी और कराने वाले भी सबकी आंखें बंद, और मुझे तो बहुत हंसी आती है ये बंद आंखों वाला तो हमारा योग ही नहीं है, आपने कोई चित्र देखा है मम्मा बाबा दादियों का बंद आंखों वाला, तो आप क्यों बंद आंखों से बैठते हैं। इन्होंने 14 बरस यही अभ्यास किया, हमारी दादी रतन मोहिनी जी सुनाया करती हैं, बाबा मुरली के बाद कराची में जब सागर के किनारे क्लिफ्टन पर ले जाते थे दो दो घंटा आमने सामने दो दो बैठ के, आजकल तो मुरली सुनी नोट की तो की नहीं की तो नहीं की, और मुरली से उठे एक दूसरे चल भाई चल नाश्ते पे चले चल बाबा के कमरे में चल वहां, एकदम बातों में आ जाते हैं, आगे ऐसा नहीं था। हम लोग भी जब मधुबन में आते थे मुरली के बाद, बाबा कई बार मुरली में भी कहता बच्चे यहां आते हो ऊपर छतें बनी हुई हैं, तो शायद मुझे तो अपना कोई ऐसा अनुभव याद नहीं कि छत पे, लेकिन मुरली के बाद थोड़ा बाहर निकलते भी थे तो सब आज बाबा ने क्या सुनाया है उस मुरली के आनंद में रहते थे। योग का अल्टीमेट जो अनुभव है वो अति इंद्रिय सुख है। और आजकल क्या होता है, हम योग करते हैं ना आधा घंटा एक, पहली बात तो करते ही नहीं आधा घंटा एक घंटा, और उठते हैं तो ऐसा थक जाते हैं, अरे बाबा थक गए, कमर दुख गई, आगे हमें तो अभी भी आगे क्या, अभी भी नहीं। योग के बाद अंदर में खुशी नशा आए, तो रतन मोहन दादी जी सुनाती हैं जब हम सागर के किनारे बाबा हमें ले जाता था, आमने सामने बैठते थे और एक दूसरे को बस यही अभ्यास करते थे, आत्मा हूं, और शर्त लगाते थे कि आंख झपकनी नहीं चाहिए। यह तो हमें भी याद है, हम छोटे छोटे थे, माँ बाप के साथ आ गए, बच्चे थे, आप समझ सकते हैं 5-6 साल के बच्चे का क्या योग होगा, हमें तो पता नहीं है क्या योग था नहीं था। लेकिन हम भी देखते थे बड़े ऐसे बैठे हैं तो हम बच्चे बच्चे आपस में बैठ जाते थे, कहते थे तू मुझे देख मैं तेरे को देखूं, आंख नहीं झपकनी, जो झपक गया हार गया हार गया हार गया। और रतनमयी दादी जी से हम कई बार सुनते हैं, वो कहती हैं हम लोग ऐसे बैठ जाते थे, आप ये अभ्यास करके देखिए, एक घंटा ऐसे ही बैठना है आंख झपके नहीं। ऐसे नहीं बीच में घड़ी, अरे अभी तो 5 ही मिनट हुए, ये वाला योग नहीं, बस बैठ जाओ एक। तो बाबा जो कहता है तुम्हारे चेहरे से चलन से दूसरों को साक्षात्कार हो, वो रुहाब आए, वो झलक फलक आए, वो हमारे में तब आएगी जब हमें ये अभ्यास होगा। चाहे आप एक एक मिनट से शुरू कीजिए, एक मिनट भी बहुत लंबा होता है, जब आप अभ्यास करेंगे घड़ी रख लीजिए सामने, अब एक मिनट मुझे यही अभ्यास करना है, मैं शिव बाबा के सामने हूं, आपको जो अच्छा संकल्प आता है, मैं शुद्ध आत्मा हूं, एक मिनट यही अभ्यास करना, करके देखिए, आपको लगेगा एक मिनट पूरा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड्स हैं, 1 से लेकर 60 तक गिनती गिनो, और वैसे एकदम आंख मेरी झपकनी नहीं चाहिए। अब सहज योग सहज योग सहज योग करते करते हम इतने सहज हो गए हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, अभी भी आप देखेंगे अपने आसपास देख लो, कई कई तो कुर्सी का आनंद ले रहे होंगे, जरा सा उनको हिला डुला भी देना कि भाई नीचे आ जा, देख लो अपने आसपास है कोई ऐसा, कई तो ऐसे ही हो जाते हैं कुर्सी, अरे अलर्ट होके बैठो। हम लोग दादियों के आगे बैठते थे ना, हमें लगता था ये दादियों में कितनी शक्ति है, अभी बाहर निकलेंगे तो कई मैंने देखा है भाई बहने आके खड्डी दी दृष्टि दे दो, अब यहां दृष्टि देते हैं तो लेते नहीं हो, और रास्ते में पकड़ लेते हैं, कहते हैं दृष्टि दे दो, दृष्टि ऐसी चीज थोड़ी ना है। क्लास में बैठना माना क्या, बाबा कोई दे ना दे दृष्टि, चाहे आप बाबा के कमरे में बैठो, बस बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है, ये फीलिंग आनी चाहिए। इसलिए ही हमने देखा मम्मा की स्थिरता, गंभीरता। मुझे याद है हम लोग करनाल में रहते थे, मम्मा करनाल में आई और उसके बाद सोनीपत में गई थी, छोटा सा सेंटर होता था सोनीपत में भी, और मम्मा एक छोटा सा ही कमरा था, मम्मा वहां कुर्सी पर बैठी थी, करनाल की कुछ कन्याएं क्योंकि पास पास में है, मैं तो छोटी कन्या थी, कई बड़ी थी, जो मैं तो शायद 4थी-5वीं में पढ़ती थी और वो तो 10वीं की थी, हम लोग भी मम्मा के पीछे पीछे, कोई उन दिनों गाड़ियां तो होती नहीं थी, ट्रेन में ही जाते थे गए, तो जब मम्मा के आगे, मम्मा ने कहा अच्छा आप लोग यहां भी आ गए, तो एक बहन थी मुझे अभी तक याद है, उसने कहा मम्मा, वो बंधेली थी, उसके घर में उस जमाने में बहुत बंधन था, तो कहा मम्मा आपको मेरा नाम याद है। मुझे अभी तक दृश्य याद है, अगर हम में से कोई होता तो क्या कहता। मान लीजिए आप दो चार घंटे मुझसे मिलते हैं, मुझे आपका नाम भी मालूम पड़ गया, और अगर आप मुझे कहेंगे कि आपको मेरा नाम, मैं कहूंगी हाँ क्यों नहीं, आप फलाने हो ना। आप देखिए ये अभिमान भान कैसे, जो बाबा ने आज कहा ना देह भान नहीं होना चाहिए। लेकिन मम्मा ने क्या कहा, मम्मा ने ये भी नहीं कहा तुमने गलत पूछा है, वैसे तो बोली मम्मा मेरा नाम याद है। मम्मा ने कहा इंद्रा है ना, मुझे अभी भी नाम उस बहन का भी याद है, इंद्रा है। बस मम्मा साइलेंस में, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं ना जताना दूसरे को, जब देह भान हमारा टूट, उस समय तो नहीं समझा होगा मैंने भी, अब महसूस करती हूं कि हमारे मम्मा बाबा कैसे थे। हम तो आज कोशिश कर रहे हैं हमारा देह भान खत्म हो, मम्मा बाबा का प्रैक्टिकल में देह भान खत्म था। मम्मा ने बहुत प्यार से, धैर्यता से, धीरे से कहा इंद्रा आई है, इंद्रा है, फिनिश्ड। वो खुश, मम्मा को मेरा नाम याद है। ये है तपस्या हमारे मम्मा बाबा की। मम्मा की बुद्धि तो इतनी तीव्र तीखी थी, बात नहीं पूछ। आप कोई भी प्रकार का कैसी भी बात पूछ लो, लौकिक अलौकिक, सेंटर पर एक भाई आता था, उसकी युगल नहीं आती थी। अब युगल नहीं आती है तो फिर लफड़ा तो रहेगा ही। अब भाई बहने डिस्टर्ब होते थे, वो कहते थे इसको आना कहो ना, नहीं आए नहीं आए। जब ये नियमों पे, उस जमाने में तो जो आते थे नियमों में बहुत पक्के, नियमों में तो चलता नहीं है ये सब, लोगों को तो पता होता था ब्रह्मा कुमार कुमारी माना क्या। तो जब मम्मा आई, मम्मा को ये बात सुनाई गई, मम्मा ये जो भाई है ना ये पवित्र नहीं रहता है, लोगों को भी पता है, तो मम्मा ये बंद करे ना आना, क्यों आता। मम्मा ने ये नहीं कहा तुम बंद करो, आपको पता है मम्मा ने क्या कहा, मम्मा ने कहा गुलदस्ता बनता है ना उसमें फूल भी होते हैं, अगर केवल फूल हों तो गुलदस्ता कहोगे, उसकी शोभा के लिए उसके आसपास पत्ते और घास भी लगती है, तो पत्ते और घास भी तो चाहिए। मम्मा और बाबा जो आज हम कहते हैं ज्ञान स्वरूप योग स्वरूप बनो, हमारे मम्मा बाबा वो स्वरूप थे। इसलिए साकार में बाबा से जो भी मिलते थे, कई भाई बहन बहुत से प्रश्न लेके आते थे बाबा से, ये पूछेंगे ये पूछेंगे ये पूछेंगे। जब बाबा के आगे जाते थे बाबा कहता था आओ बच्चे, कोई भी आएगा बाबा कहता था आओ बच्चे, और बस बाबा का कहना आओ बच्चे और सामने वाले के प्रश्न खत्म हो जाना। फिर बाहर आके कहते अरे मैं तो भूल ही गया बाबा के आगे, क्योंकि बाबा की एकाग्रता, एकाग्रता माना ये नहीं होता कि मैं एकदम ऐसी एकाग्र होके बैठी हूं, इसको एकाग्रता नहीं कहते। बहुत सी अव्यक्त मुरलियों में भी बाबा ने डिफाइन किया हुआ है एकाग्रता, माना मैं अपने लक्ष्य की ओर फोकस्ड हूं। बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, तुम्हें क्या बनना है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। अब सच बताइए सारा दिन में हमें कितनी बार याद आता है मैं लक्ष्मी बनने वाली हूं या नारायण बनने वाला हूं, आता है याद कभी? ईमानदारी से आप देखिए, नेवर। एक भाई जी ने हाथ उठाया, मुबारक है, लेकिन अधिकतर नहीं आता है, आता ही नहीं है याद कभी। जब मुरली, आज भी सवेरे बाबा ने कहा स्वर्ग में तुम कितने सुखी थे, ये थे, तब थोड़ा सा मुझे ये आए मैं लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्मा हूं। जैसे हमारी दादियां सुनाती थी, बाबा ने यज्ञ में बहनों को ये अभ्यास कराया मैं विष्णु चतुर्भुज हूं। और हमारे यज्ञ में जब हम कुमारियां ट्रेनिंग में भी आई तो रतन मोहिनी दादी जी हमें एक विष्णु चतुर्भुज रास सिखाती थी, तो बाबा विष्णु चतुर्भुज रास कराते थे। मैं खड़ी हूं आगे समझो हाथ, पीछे वाला ऐसे हाथ करके खड़ा, फिर एक गाने पर इकट्ठे घूमना है, क्योंकि एक का मुंह उधर है एक का उधर है, लेकिन इतनी प्रैक्टिस इकट्ठे हम घूमेंगे, विष्णु चतुर्भुज रास कहते थे उसको। तो बाबा ने प्रैक्टिकल में ये प्रैक्टिस करवाई, तुम विष्णु चतुर्भुज हो। बहनों के मन में ये ना रह जाए मैं तो लड़की हूं ना, मैं तो बहन हूं ना, मैं ये कैसे कर सकती हूं। बाबा कहता था तुम विष्णु चतुर्भुज हो। तो बाबा का बनने से, ज्ञान सुनने से क्या मेरे चिंतन का रूपांतरण हुआ या नहीं हुआ? अब ये है बात सोचनी, नशा क्यों नहीं चढ़ता? क्योंकि हमारा चिंतन बदला ही नहीं है, हमारा चिंतन वही है, उसी दुनिया वाला। कहते हम जरूर हैं बाबा हमारा साथी है, कोई काम नहीं होगा दो घंटा योग भी कर लेंगे, कहेंगे बाबा को भोग लगाते हैं विशेष, फिर वैसे के वैसे। लेकिन सदैव मेरे मन में ये निश्चय, ये विश्वास रहे बाबा मेरा साथी है। अब बताइए ये कितनी सहज बात है, ये समझ आती है कि बाबा मेरा साथी है? ये भी हम भूल जाते हैं, फिर हम कहते हैं क्या करें। और हमारी बड़ी दीदी जी थी, दीदी मनमोहिनी जी, कोई भी बात होती थी, अब तो बहुत सहज है, अब तो लोग ब्रह्मा कुमारियों को स्वीकार करते हैं और ब्रह्मा कुमारियों के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हमने वो फेस देखा हुआ है जब लोग ब्रह्मा कुमारी के अगेंस्ट थे। कोई भी बात में, कोई सेवा में विघ्न आता था, कोई बात होती थी, हमारी बड़ी दीदी जी क्या करती थी, हुआ पड़ा है, हुआ पड़ा है। हम छोटे थे, हमें हंसी आ जाती थी, हम बाहर आके कहते थे, दीदी कह देती है हुआ पड़ा है, पर वो फलाना तो ये कर ही नहीं रहा है, वो तो मान ही नहीं रहा है। तब समझ नहीं आई, रियली बताती हूँ, अब महसूस करते हैं हम सचमुच हमारी दीदी दादियों का नशा हुआ पड़ा है, क्योंकि बाबा साथ है, बाबा करेगा। तो ये दृढ़ता माना क्या, केवल हम खड़े हो जाएं या जोर से बोलें हाँ मैं प्रतिज्ञा करती हूं, मैं बाबा की हूं, बाबा मेरा है, ये जरूरत नहीं है। लेकिन कर्म करते हुए कदम कदम पर बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरा साथी है। तो भट्टी माना है अपने में ये दृढ़ता लाना, अपने अंदर ये नशा लाना। हम चंद्रमणि दादी जी से कई बार पूछते थे, दादी आपका योग लग जाता है, हमारा तो योग नहीं लगता है, हमारा योग थोड़ा इधर उधर बुद्धि जाती है। तो दादी कई बार कहती थी तुम्हारी तो जाएगी, हम कहते थे क्यों जाएगी, तो कहती थी कि बाबा के साथ हम जो रहे, बाबा ने जो अभ्यास कराया, तो हर समय हमें क्या लगता था, बाबा साथ है, बाबा साथ है, बाबा से पूछो, बाबा से कहो। तो हमें उस समय लगता था दादी आप उस समय आ गए, हम क्यों नहीं आए, हम बाद में, आजकल ये फील नहीं होता है। लेकिन हम लोग जब आए, पहले थे ही छोटे, ज्ञान की इतनी समझ नहीं आई, चलो एक स्नेह प्यार से, लेकिन बड़े हुए तो हमें लगता था ये दादियां ना कितनी भाग्यशाली हैं, ये पहले आ गई, हम क्यों नहीं उस समय में आए, ये बहुत लगता था मन में। अब अव्यक्त बाबा की मुरलियां पढ़ो, एक मुरली में बाबा ने कहा बच्चे बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए, आगे चलकर समय नहीं मिलेगा। अब मैं आप सबसे पूछती हूं, आप सब उस दुनिया में रहते हैं, आपको क्या लगता है समय परिवर्तन हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है? भाई काम धंधे सब देखो क्या हो रहा है, 2 साल सब घरों में शांति से बैठे। अच्छा ये बताओ 2 साल हम लोग घरों में बैठे, क्या कोई भाई बहन ऐसा है जिसके घर में 2 साल में एक दिन या एक समय खाना ना बना हो, वो हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ जो कहता मेरे घर में खाना नहीं बना बहन जी, एक टाइम था ही नहीं, कोई नहीं। आप देख लीजिए हमारे पास इतनी कमाई है, जो आपकी दुकानें बंद थी, ऑफिस भी कुछ समय बंद रहे, बाद में ऑनलाइन चालू हुए, कंपनीज भी ऑनलाइन चालू हुई, लेकिन हम सबके पास इतना था। बल्कि मैंने तो ये देखा हमारे सेंटर पर कई भाई बहनों को इतनी चिंता हो गई, एक माता को इतनी चिंता हो गई, वो तो बाबा की पक्की बच्ची है और बेटा अपना धंधा करता है, उसने अपने बेटे को कहा देख भाई मेरे बाबा के घर में हफ्ते में एक बार तू सब्जी दे के आना। अब उसको मालूम है ये इतने लोग रहते हैं, वो इतनी ढेर सब्जी हमें दे जाता था जो हमें खरीदनी नहीं पड़ती थी। हम लोग 30-40 लोग रहते हैं, सोच लीजिए कितनी सब्जी बनती होगी। मैं बहुत पूछती थी उन दिनों हर भाई बहन से, भाई कोई ऐसा हो जिसके घर में नहीं है तो बाबा के घर में आ जाओ। और उसके बाद भी हम मधुबन में कई बार आए, कईयों को मैं पूछती हूँ क्या कोई ऐसा था जिसने खाना ना, सबने खाया आराम से रहे, इसका मतलब क्या है? हमारे पास बहुत बाबा ने दिया है। तो मीठे प्यारे भाई बहनों, बाबा का अनुभव, दादियों का अनुभव यही है, बाबा को हम साथी बनाएं, बाबा मेरे साथ चलो, घर में जाओ, दुकान पर जाओ, ऑफिस में जाओ, कहीं भी जाओ, बाबा आप चलो, पर ऐसे नहीं ले जाओ फिर रास्ते में ही कहीं छोड़ के और खुद आ जाओ, फिर याद आएगा अरे मैं सवेरे 10 बजे दुकान पे गया था तो कहा था बाबा चलो, अब रात को 11 बजे सोने लगा, बाबा गुड नाइट, बाबा मैं तो आपको ले गया था लेके तो आया ही नहीं, लाना भी तो पड़ेगा या नहीं लाना पड़ेगा। जब साथी बनाया है तो मेरे को ये रियली स्थूल में फीलिंग आनी चाहिए, हाँ बाबा चलो अब हो गया हमारा आज का धंधा। इतनी समीपता, आज भी था ना वरदान में, बाबा के पास मेरी बाबा से इतनी समीपता हो, बाबा चलो पर छोड़ के मत आ जाना, फिर लेके भी आना। बाबा की एक मुरली में तो ये यहां तक बाबा ने कहा कि बच्चे जहां आप रात को सोते हैं उस सोने के कमरे में भी आपको दुनियावी कोई बात समस्याओं की बात नहीं करनी है। मान लो आपके घर में कोई आने वाला है या कोई बीमार है, उसकी बात की राय करनी है, सोने के कमरे में नहीं बाहर ही बात कर लो। जब सोने के कमरे में आओगे तो बस बाबा की याद में बाबा को साथ लेके सो जाओ, यहां तक हमें बाबा ने कहा है। तो अब ये जो वर्तमान समय है ये तेजी से बदलने वाला समय है, बदल रहा है। आगे हम पूछते थे विनाश कब होगा, विनाश कब होगा, अब कब होगा, कब होगा, होगा नहीं, विनाश हो रहा है। प्राकृतिक आपदाएं, एटॉमिक वॉर, सिविल वॉर, सब कुछ आप देख लीजिए गर्मा गर्मी में है। और अब लंबे समय का पुरुषार्थ जो हमें बाबा कहते रहे कि बच्चे लंबे समय का किया हुआ पुरुषार्थ काम आएगा, अब वो लंबा समय भी गया, अब तो बस ये दृढ़ता चाहिए हमारे अंदर, मेरा एक सेकंड भी, चाहे मैं अब ज्ञान में हो सकता है आप में से कई तो एक दो साल के भी हों, 5 साल के हों, आप कहेंगे हमें तो अभी इतना ज्ञान समझ भी नहीं आया, तो आज से हम ये पक्का करें बस टाइम इज मनी, यही कहते हैं ना दुनिया में भी टाइम इज मनी, आप भी बातों में कहते हैं अगर समय रहा तो मैं देखना आपको कितना कमा के दिखाऊंगा। कमाऊंगा कैसे, जब समय रहा तो वैल्यूएबल समय है, एक एक सेकंड अब मुझे बाबा के साथ बिताना है। मेरा काम छूट जाए तो छूट जाए, इसका मतलब यह नहीं मैं सुस्त बन के रहूं, ट्रेन का टाइम है और मैं घर से निकल रही हूं, यह सुस्ती नहीं चाहिए, चुस्त चाहिए, एक्टिव चाहिए, लेकिन बाबा मेरे साथ है, बाबा ही मेरा साथी है। मम्मा बाबा दादियां सब ने एकदम बाबा को पकड़ के रखा। आपको मैंने सुनाया ना, हमारी कुंज दादी कहती है भाई तुम्हारे बाप का नाम, कहती प्रजापिता ब्रह्मा। हम लोग तो अब ज्ञान में भी आ गए, जब हम लोग ज्ञान में आए तो हम लोग ये भूल गए ये वर्मा है, ये शर्मा है, ये फलाना है, सब लोग अपना अपना नाम बताते थे, वही नाम चलता था। और आजकल तो यही कहते हैं सेंटर्स पर, वो शुक्ला जी नहीं आए, मिश्रा जी नहीं आए, वर्मा जी नहीं, इनको भूलिए, ये देवभान, मैं बाबा का बच्चा हूं, बाबा तो वो मिश्रा और फलाना चौहान और फलाना फलाना है ही नहीं, मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूं, बाबा का बच्चा। ये नशा जब तक हमें नहीं चढ़ेगा तब तक जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होगी। तो हमने तो जो सुना, जो देखा, जो समझा, वो यही समझा कि मम्मा बाबा दादियां ज्ञान का नशा निश्चय, आप कोई भी दादी का पूछो, कोई भी भाई का पूछो, हमारे दादा आनंद किशोर थे, दादा विश्वरतन थे, क्या उनको ज्ञान का नशा रहता था। कोई बात को दादा ये बात ऐसे हो गई, तो दादा आनंद किशोर का एक शब्द फेवरेट था, FALTU माना फालतू। कोई इधर उधर की बात सुनाए ना, दादा ऐसे ऐसे थोड़ी होना चाहिए, FALTU। इतना प्रसन्न बात नहीं पूछो। तो हमें भी यही करना है, ज्ञान का रमण सारा दिन, जो बाबा ने कहा है, मैं आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप हूं, योग का अनुभव ये है, मैं सारा समय आनंदित रहूं। ठीक है, ओम शांति।